ये रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। पोखरा क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल भ्रष्टाचार के मामले में अख्तियार ने तत्कालीन पर्यटन सचिव केदार बहादुर अधिकारी सहित 21 व्यक्तियों और दो कंपनियों के विरुद्ध दर्ज किया मुकदमा। आंतरिक कारणों से प्रतिनिधि सभा चुनाव में पराजय हुई है नेपाली कांग्रेस का प्रारंभिक निष्कर्ष। हालिया प्रतिनिधि सभा चुनाव ने देश के इतिहास में ही स्तरीय चुनाव का मानक स्थापित किया है प्रधानमंत्री सुशीला कार्की का कथन। और 48 घंटे के अंदर हुर्मुज स्ट्रेट को खुला न करने पर ईरान के ऊर्जा केंद्रों पर भीषण हमले होंगे, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दी चेतावनी, ईरान ने भी दी जवाबी चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग ने पोखरा अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल निर्माण परियोजना में परामर्शदाता की नियुक्ति के दौरान भ्रष्टाचार करने के आरोप में तत्कालीन पर्यटन सचिव केदार बहादुर अधिकारी सहित 21 लोगों के विरुद्ध भ्रष्टाचार का मामला दायर किया है। आयोग के प्रवक्ता सुरेश नेपाने द्वारा आज जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि तत्कालीन संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव केदार बहादुर अधिकारी नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के तत्कालीन महानिदेशक संजीव गौतम, राजन पोखरेल, प्रदीप अधिकारी सहित 21 व्यक्तियों, चीनी ठेकेदार कंपनी और परामर्शदाता पर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हुए भ्रष्टाचार करने के आरोप में विशेष अदालत काठमांडू में मामला दायर किया गया है। विज्ञप्ति के अनुसार आयोग ने तत्कालीन सचिव अधिकारी सहित पूर्व महानिदेशक राजन पोखरेल और प्रदीप अधिकारी से प्रति व्यक्ति 46,15,00,000 और पूर्व महानिदेशक संजीव गौतम और महेंद्र सिंह रावल से 8,95,00,000 से अधिक की क्षतिपूर्ति की मांग करते हुए मामला दायर किया है। नेपाली कांग्रेस के प्रारंभिक निष्कर्ष के मुताबिक पार्टी के आंतरिक कारणों से चुनाव में पराजय हुई है। पार्टी मुख्यालय सानेपा में केंद्रीय कार्य समिति की बैठक के बीच संचारकर्मियों के साथ बातचीत में कांग्रेस प्रवक्ता देवराज चालीसे ने कहा कि पार्टी को मिली हार वाले अधिकांश क्षेत्रों के मतांतर देखने पर पता चलता है कि हार की वजह आंतरिक कारण है। इस बात का जिक्र करते हुए कि 5 वोट से लेकर 3,000 के मतांतर वाले 21 क्षेत्र हैं, उन्होंने बताया कि प्रारंभिक निष्कर्ष के मुताबिक 3 से 5,000 मतांतर वाले क्षेत्रों में भी अंतर्घात और चुनावी कैंपेन में त्रुटि की बातें सामने आई हैं। प्रवक्ता चालीसे ने आगे कहा कि चुनावी नतीजों के बारे में जिलों से आए और केंद्र द्वारा पार्टी में प्रस्तुत प्रतिवेदनों का सूक्ष्म अध्ययन के बाद निष्कर्ष निकाला जाएगा और आने वाले दिनों में कांग्रेस फिर से सुदृढ़ होते हुए आगे बढ़ेगी। प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने कहा है कि प्रतिनिधि सभा चुनाव ने नेपाल के निर्वाचन इतिहास में एक स्तरीय चुनाव का मानक स्थापित किया है। निर्वाचन आयोग के पदाधिकारियों और कर्मचारियों के सम्मान में आज बालुवाटार में आयोजित चायपान समारोह में प्रधानमंत्री कार्की ने अनेक चुनौतियों का सामना करते हुए चुनाव के पक्ष में दृढ़तापूर्वक खड़े रहकर काम करने की क्षमता आयोग के नेतृत्व में दिखाई देने की सराहना की। उन्होंने कहा कि स्तरीय निर्वाचन का मानक स्थापित करना संभव हुआ है और सफल चुनाव दीर्घकालीन लोकतंत्र के लिए भी ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण है। ये जानकारी गृह मंत्री ओम प्रकाश अर्याल ने दी। मौके पर आयोग की ओर से कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भंडारी ने निर्वाचन परिणाम प्रतिवेदन की एक प्रति प्रधानमंत्री कार्की को सौंपी। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
हेलो,
के गर्दै छौ?
हाम्रो बिहेको शपिङको लागि आएको नि बाबा मम्मीसँग।
ए हो र, अनि मेरो लागि के किन्दै छौ?
बाबा मम्मी यति हुनुहुन्छ के सोच्नुहुन्छ होला उहाँले। मलाई त कस्तो लाज लाग्छ, भरे राति बोलौँ न ल।
अहिले फ्री वाइफाई छ क्या अफिसमा, बुझ न, भरे कसरी गर्नु?
मेरो हुनेवाला श्रीमानज्यूलाई यति पनि थाहा छैन कि क्या हो? एनटीसी को अनलिमिटेड नाइट भोइस प्याक राति 10 बजेदेखि बिहान 6 बजेसम्म।
ए हो त है, मेरो वाइफ त कति स्मार्ट।
अब रात तपाईँको नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। जिला प्रशासन कार्यालय कपिलवस्तु ने आज भी महाराजगंज नगरपालिका के कुछ क्षेत्रों में निषेधाज्ञा जारी रखी है। कपिलवस्तु के प्रमुख जिला अधिकारी जनार्दन गौतम ने बताया कि जिला सुरक्षा समिति के निर्णय के अनुसार अगली सूचना तक निषेधाज्ञा लागू रहेगा। उन्होंने जानकारी दी कि जिन क्षेत्रों में निषेधाज्ञा लागू है वहां स्थानीय प्रशासन आईन के अनुसार लोगों को एकत्र होने, सभा जुलूस और प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं होगी। प्रमुख जिला अधिकारी गौतम ने यह भी कहा कि निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने वालों को नियंत्रण में लेकर कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। कपिलवस्तु की महाराजगंज नगरपालिका दो बरगदा में दो समुदायों के बीच हुए विवाद के कारण ये निषेधाज्ञा जारी की गई है। जिला पुलिस कार्यालय के एसपी संतोष आचार्य के अनुसार इस घटना में 23 लोग घायल हुए हैं। उन्होंने बताया कि घायलों का इलाज भैरहवा, भरतपुर और बहादुरगंज के अस्पतालों में चल रहा है। घटना के संबंध में पुलिस ने 9 लोगों को हिरासत में लिया है। इसी बीच प्रशासन ने आज एक अपील जारी करते हुए कहा है कि जिले में शांति, सुरक्षा और सद्भाव बनाए रखने के लिए प्रशासन प्रतिबद्ध है। साथ ही राजनीतिक दलों, जनप्रतिनिधियों, नागरिक समाज, संघ संस्थाओं और संचार क्षेत्र सहित सभी पक्षों से शांति व्यवस्था बनाए रखने में जिम्मेदार भूमिका निभाने और अनावश्यक भीड़भाड़ से बचने का आग्रह किया है। बीते शुक्रवार से देश के अधिकांश स्थानों में हुई बारिश के बाद अब वायु प्रदूषण काफी कम हो गया है। जहां एक हफ्ता पहले वायु गुणवत्ता 178 पर पहुंचकर काठमांडू विश्व का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर दर्ज हुआ था, वहीं आज ये 60 AQI पर आकर विश्व के प्रदूषित शहरों की सूची में 67वें स्थान पर है। बता दें कि AQI मापदंड अनुसार 0 से 50 तक सामान्य माना जाता है, वहीं 51 से 100 तक सावधानी अपनाने का संकेत देता है, जबकि उससे ऊपर अंक अनुसार खतरनाक स्तर का माना जाता है। अध्यागमन विभाग ने प्रतिबंधित क्षेत्रों में पदयात्रा करने के लिए आवश्यक अनुमति सेवा को सरल और तेज कर दिया है। विभाग ने आज सूचना जारी करते हुए बताया कि नेपाल के 13 जिलों के प्रतिबंधित क्षेत्रों में पदयात्रा करने वाले विदेशी नागरिकों के लिए विभाग से अनिवार्य रूप से अनुमति लेनी होगी। ऐसे प्रतिबंधित क्षेत्रों में समूह के रूप में एजेंसी के माध्यम से जाने वाले विदेशी पर्यटकों के लिए पदयात्रा अनुमति जारी करने की सेवा को ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से और अधिक व्यवस्थित, तेज, सरल और सेवाग्राही मैत्रीपूर्ण बनाया गया है। वीरगंज रक्त संचार केंद्र में रक्त की कमी के कारण गंभीर रूप से घायल मरीजों और प्रसूता महिलाओं का उपचार भी प्रभावित हुआ है। वीरगंज रक्त संचार केंद्र के प्रमुख सौरभराज पांडे ने बताया कि केंद्र में किसी भी प्रकार के रक्त भंडार की कमी है और फिलहाल किसी भी समूह का रक्त उपलब्ध नहीं है। उन्होंने कहा कि रक्त की कमी के साथ साथ वीरगंज के अस्पतालों में मरीजों का दबाव भी बढ़ गया है। पांडे ने यह भी बताया कि प्रतिदिन 150 से अधिक मरीजों के परिजन विभिन्न अस्पतालों से ब्लड के लिए आते हैं और फिलहाल केवल रक्तदान से ही इस कमी को टाला जा रहा है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। ईरान के सरकारी मीडिया ने कहा कि अगर ईरान के ईंधन और ऊर्जा केंद्रों पर हमला होता है तो देश की सेना अमेरिका से जुड़ी एनर्जी फैसिलिटीज को निशाना बनाएगी। ईरान की यह चेतावनी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक नए अल्टीमेटम के बाद आई है। ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान ने 48 घंटों के भीतर हॉर्मुज स्ट्रेट को नहीं खोला तो अमेरिका ईरान के बिजली संयंत्रों को पूरी तरह तबाह कर देगा। इससे पहले ईरान ने दक्षिणी इसराइल पर मिसाइलों से हमला किया। निशाना बनाए गए क्षेत्रों में इसराइल के अघोषित परमाणु हथियार भंडार वाले शहर डिमोना भी शामिल हैं। ईरान ने कहा है कि अब युद्ध नए चरण में पहुंच गया है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 21.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8.4 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पोखरा क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल भ्रष्टाचार के मामले में अख्तियार ने तत्कालीन पर्यटन सचिव केदार बहादुर अधिकारी सहित 21 व्यक्तियों और 2 कंपनियों के विरुद्ध दर्ज किया मुकदमा। आंतरिक कारणों से प्रतिनिधि सभा चुनाव में पराजय हुई है नेपाली कांग्रेस का प्रारंभिक निष्कर्ष। हालिया प्रतिनिधि सभा चुनाव ने देश के इतिहास में ही स्तरीय चुनाव का मानक स्थापित किया है, प्रधानमंत्री सुशीला कार्के का कथन। और 48 घंटे के अंदर हुर्मुज स्ट्रेट को खुला न करने पर ईरान के ऊर्जा केंद्रों पर भीषण हमले होंगे, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दी है चेतावनी, ईरान ने भी दी जवाबी चेतावनी। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।